ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग कर रहे हैं सेकंड चैप्टर 44th वर्स। बीच में मैंने कर लिए थे कुछ श्लोक फिरोजपुर में, सो हम 44th वर्स से कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरा अध्याय 44th कैसे कहेंगे, 44वां श्लोकों के भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेल, अगर आप भूल गए होंगे तो दूसरे अध्याय में क्या चल रहा था। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया, नहीं सबसे पहले, क्योंकि अर्जुन शोक कर रहा था और ऑफ कोर्स शोक करने वाले को कुछ भी चीज समझ नहीं आ सकती। जो शोक में मग्न है, शास्त्रों में लिखा है जो शोक में मग्न है उसको कभी भी एडवाइस मत करो, उसको समझ ही नहीं आया कुछ। इसलिए भगवान ने पहले सोचा कि अर्जुन का शोक हटाना है, उसके बाद मैं डिसीजन दूंगा कि लड़ना है या नहीं लड़ना, तभी तो समझ आएगा उसको। तो शोक हटाने के लिए भगवान ने पहले आत्मज्ञान दिया, और प्रभुपाद पपट में लिख रहे हैं कि आत्मज्ञान भगवान ने क्यों दिया। आत्मज्ञान मतलब ज्ञान योग, कि भी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और इसको कहते हैं आत्मज्ञान, विवेक। और क्यों दिया, क्योंकि जिससे आत्मज्ञान योग से धीरे धीरे किस में पहुंच जाए, कर्म योग तक। अब समझने का फायदा ही क्या, मैं आत्मा हूं परमात्मा क्या, अगर सेवा नहीं करे तो। कर्मयोग भगवान गीता में बुद्धि योग लिख रहे हैं, पीछे के चैप्टर्स में, अभी यहां पे नहीं है। कर्मयोग तक लाने के लिए भगवान ने आत्मज्ञान दिया। और फिर भगवान ने कर्मयोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब यहां पे भगवान कर्मयोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, और कृष्णा कर्मयोग के बारे में कह रहे हैं कि कर्मयोग जब कोई व्यक्ति करता है, जैसे उदाहरण के लिए पिछले श्लोकों में भगवान कह रहे हैं कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है, तो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के विविध सकाम कर्मों करने से संस्तुति करते हैं। पिछले दो श्लोकों में प्रभुपाद मतलब भगवान कह रहे हैं। कर्मयोग की बात आती है तो भगवान ने बहुत सारी चीजें बात की। भगवान की सेवा की बात आती है तो लोग सेवा करते हैं मगर फलों से आसक्त हो जाते हैं, नहीं मतलब शांति से, सुख से। कई लोग सेवा करने आते हैं भगवान की और स्वर्ग में फंस जाते हैं। और अब भगवान यहां पे समझा रहे हैं कि भगवान की सेवा में सबसे बड़ी रुकावट है इंद्रिय भोग। कॉन्टेक्स्ट सेवा का चल रहा है, ये समझना पड़ेगा। मतलब अगर आप बिना कर्मयोग मतलब सेवा समझ गए ना, वो तो मैं बता चुका हूं, कर्मयोग चल रहा है। अब अगर आप बिना कॉन्टेक्स्ट जाने आप सिर्फ ये श्लोक पढ़ोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो लगेगा हाँ भाई, जो लोग इंद्रिय भोग भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन भगवान के प्रति भक्ति में दृढ़ निश्चय नहीं हो पाते। कर्मयोग मतलब सेवा, सेवा मतलब भक्ति, दैट्स ऑल। तो जब कॉन्टेक्स्ट चल रहा है तो हमें कॉन्टेक्स्ट में श्लोक इंटरप्रेट करना पड़ेगा। नहीं जैसे मैं उस दिन आपके सेमिनार में नहीं कह रहा था, जैसे अगर एक बच्चा का एक जमा एक दो है और एक बिजनेसमैन का एक जमा एक दो है, उन दोनों में बहुत फर्क है। बच्चा कह रहा है एक जमा एक दो है तो वो मैथ सीखना चाहता है, जब बिजनेसमैन कह रहा है एक जमा एक दो है तो वो पैसे गिन रहा है, 1 करोड़ + 1 करोड़। 2 करोड़ नहीं, दोनों में फर्क है। तो अगर आप बिजनेसमैन के कॉन्टेक्स्ट में लोगे तो एक जमा एक दो बिल्कुल अलग चीज है। तो ये श्लोक कर्मियों के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, सेवा के कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए प्रभुपद यहां पे लिख रहे हैं कि जो लोग उनके मन भगवान के प्रति भक्ति में दृढ़ निश्चय नहीं होते, समाधव, समाधि का मतलब लिख रहे हैं प्रभुपद अपने श्लोक में यहां पर, दृढ़ निश्चय। और तात्पर्य में लिख रहे हैं समाधि का मतलब, हम लोग सोचते हैं समाधि का मतलब क्या है कि आंख बंद करके हम बैठ के ओम बोल के और एक ही जगह बैठे रहे, गलत। प्रभुपाद लिख रहे हैं वैदिक शब्द कोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्मतत्व यथात्मयम्, ये समाधि है। देख लो तात्पर्य में क्या लिखा है। समाधि का अर्थ है स्थिर मन, तात्पर्य में तो प्रभुपाद यही लिख रहे हैं। समाधि का मन है स्थिर मन, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं, सिंपल सी बात है। सो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में स्थिर मन तब तक नहीं होगा, सेवा में मन स्थिर तब तक नहीं होगा जब तक इंद्रिय भोग और ऐश्वर्य के प्रति हम अत्यधिक आसक्त रहेंगे। सो इसलिए हम कभी कभी देखते हैं कि कभी सेवा करने का मन करता है, कभी सेवा करने का मन नहीं करता, कभी सेवा से मन हट जाता है। क्यों? क्योंकि दो रुकावटें सबसे बड़ी, जब हम भोग करेंगे इस संसार में तो संसार की सेवा करने का मन करेगा, वो संसार की सेवा ही तो है, भोग और क्या है, और भगवान की सेवा से मन हट जाएगा। तो शीला प्रभुपाद जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद के हम प्रभुपाद कह रहे थे मैं हमेशा समाधि में हूं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद का मन किस पे फिक्स्ड है? सेवा में फिक्स्ड है। तो चलते फिरते भी समाधि में हो सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह बैठना है योगियों की तरह। योगियों ज्ञानियों का मतलब बिल्कुल अलग होता है समाधि का, उनका मतलब होता है गुफा में जाके और ओम बैठ जाओ और आप शरीर से अलग हो जाओ। भक्ति में समाधि का मतलब बिल्कुल अलग है। भक्ति में समाधि का मतलब है कि बुद्धि और मन भगवान की सेवा में स्थिर हो जाना। मन सिर्फ एक ही चीज सोच रहा है कि मैं भगवान के लिए क्या करूं, बस। जब ये सिर्फ यही विचार है मन में तो इसका मतलब समाधि में। तो आप चल रहे हो, जाग रहे हो, जो भी प्रभुपाद सोच रहे थे, प्रभुपाद के मन में सिर्फ एक ही चीज थी कि भगवान का प्रचार पूरे संसार में कैसे बढ़े, सारी क्रियाएं उसी के लिए चल रही हैं। तो प्रभुपाद समाधि में, सिंपल। सो भोग ऐश्वर्य प्रसक्तराम तयापृत चेतसाम। और फिर उसके बाद भगवान बोल रहे हैं त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण भवर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। अब प्रॉब्लम यह है कि जो भक्ति करते हैं ना, सो भक्ति में क्या है, जब हम सेवा कर रहे हैं तो भक्ति करने वाले वेद भी पढ़ते हैं, कुछ लोग वेद भी पढ़ते हैं ना, मतलब पहले तो वेद भी पढ़ते थे और वेदों से भक्ति समझते थे। मगर भगवान कह रहे हैं देखो भाई, प्रॉब्लम यह है कि वेदों में 3 गुणों की बात की गई। वेदों में जनरली स्वर की बात की गई, स्वर देवी देवताओं की उपासना करो, यज्ञ करो, स्वर की प्राप्ति करो। भगवान कह रहे हैं अर्जुन इन 3 गुणों से ऊपर उठो। शीला प्रभुपाद अपने पपट में लिख रहे हैं कि वेदों में जनरली कर्मकांड की बात की गई है शुरू में, ऐसा लगता है। और उसके बाद धीरे धीरे वेदांत दर्शन आता है। वेदों का अंत किसमें? वेदांत दर्शन में। तो वेदांत में क्या समझाया? वेदांत में समझाया कि भ्रम जिज्ञासा करो, ये समझने की कोशिश करो कि भगवान कौन है। और फिर वेदांत के बाद आता है उपनिषद, और उपनिषदों, ये उपनिषद वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। महाभारत को पंचम वेद कहते हैं और महाभारत का भाग है गीता। सो कहने का मतलब है भगवान कह रहे हैं त्रैगुण्य विषय वेदा, वेदों के शुरू के भाग में जनरली 3 गुणों की बात की गई, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। कहने का मतलब है कि स्वर की प्राप्ति, स्वर का प्रलोभन दिया है भाई, आप सूरज की पूजा करो तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, इंद्र की पूजा करो तो ऐश्वर्य मिल जाएगा, ऐसी ऐसी भी चीजें हैं वेदों में। मगर भगवान कह रहे निस्त्रैगुण भव अर्जुन, अर्जुन 3 गुणों से ऊपर उठो। 3 गुणों से ऊपर उठने का मतलब है कि भगवद गीता पढ़ो, तभी प्रभुपाद तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवद गीता और भगवदगीता और उपनिषदों के बारे में। उपनिषद और भगवदगीता पढ़ो, क्योंकि उपनिषदों और भगवदगीता में 3 गुणों की चर्चा नहीं है, फल की चर्चा नहीं है, स्वर की चर्चा नहीं है, कोई इच्छा पूरी करने की चर्चा नहीं है। उपनिषद और भगवद गीता में केवल यही दिया, अपनी सारी इच्छा छोड़ के भगवान की इच्छा को पूरी करो। इसलिए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, सेवा जो भक्ति में वेदों का जो कर्म कांड सेक्शन है, शुरू का सेक्शन, वो भी रुकावट है। इसलिए हम लोग पढ़ते ही नहीं हो, हम लोग मतलब महाप्रभु के मूवमेंट में हम कौन सा पढ़ते हैं वेदों का पाठ, हम कौन से यज्ञ करते हैं, हम कौन सा वेदों का शुरू का पाठ पढ़ रहे हैं। महाप्रभु ने मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, महाप्रभु ने हमें बोला कि भगवद्गीता पढ़ो, क्योंकि भगवद्गीता किसका किसका निचोड़ है, उपनिषदों का निचोड़ है। या तो उपनिषद पढ़ लो या भगवद्गीता पढ़ लो। तो प्रभुपाद सीधा लिख रहे कि उपनिषद महाभारत का एक अंग है। मध्वा संप्रदाय में महाभारत पढ़ते हैं, मध्वा संप्रदाय में जाओगे ना, क्योंकि महाभारत को प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, पंचम वेद। इस तात्पर्य के आखिरी लाइन में लिख रहे हैं प्रभुपाद, पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। महाभारत को पंचम वेद कहते हैं। पंचम वेद इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे वेदों का निष्कर्ष किसमें, महाभारत में। मगर फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि महाभारत, भागवतम में लिखा है कि महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, गीता। महाभारत बोकर ही इसलिए गई थी कि गीता बोली जाए। सो या तो आप उपनिषद पढ़ लो या गीता पढ़ लो। गीता जैसे उपनिषद सारे वेदों का अंग है, सार है, उसी प्रकार सारे महाभारत का सार क्या है, गीता। बस तो, और जैसे हम कोई वेद नहीं पढ़ते, केवल उपनिषद पढ़ते हैं, क्योंकि वेद पढ़ने से फंस जाएंगे ना फलों में, उसी प्रकार हम महाभारत नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं। क्योंकि महाभारत में बहुत सारी चर्चा है। महाभारत अगर आप वैसे पढ़ोगे बिना वैष्णव कमेंट्री के तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। उसमें धर्म की चर्चा चल रही है, उसमें सत्य की चर्चा चल रही है, माता पिता की सेवा चल रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स चल रहा है, ऐसे समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए गीता, गीता पढ़ने से क्लियर हो जाएगा, हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना। गीता में तो नहीं लिखा भगवान ने माता पिता की सेवा करनी है, वो गलत नहीं है। मगर प्रॉब्लम है कि हम अल्प ज्ञानी है ना, हम लोग छोटी छोटी चीजों में फंस जाएंगे और मेन चीज छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम ये है। इसलिए प्रभुपाद ने अपने पूरे पॉपट में बोला है। और फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। इसी श्लोक के अनुवाद में, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्विक्षो में आत्मवान। इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? सारे द्वंद्वों और लाभ की और तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बन जाओ। गीता भगवान के पहली लाइन में क्या कह रहे हैं, सारे गुणों से ऊपर उठकर निर्गुण हो जाओ। सारे गुणों से ऊपर उठने का मतलब क्या बताया, वो तो ठीक है, प्रभुपाद क्या लिखना चाहते हैं, कैसे हो कैसे हो, प्रैक्टिकल एडवाइस क्या दे रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, कि वेदों का पहला भाग छोड़ दो, ये प्रैक्टिकल एडवाइस है। फंसोगे तो फंस जाओगे तीन गुणों में, इतनी बुद्धि नहीं है, तुम वेद पढ़ लो, पीएचडी करो जाके। इसका मतलब नहीं है वो गलत नहीं है, मगर हम अल्प ज्ञानी, प्रभुपाद आगे आ जाएंगे, क्योंकि श्री संप्रदाय और उसमें वेद पढ़ते हैं, मधुवा में भी वेद पढ़ते हैं, मगर वो एसेंस उन्होंने खो दिया, उसमें फंस गए वो। तभी महाप्रभु ने मध्वा संप्रदाय को क्या बोला, तुम ही तत्ववादी, तुम फंस गए उन चीजों में। तो कलयुग में हम शूद्र है ना, कलौ शूद्र संभवा, हम उन चीजों में फंस जाएंगे, सेवा करना ही भूल जाएंगे। और प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं पपट में, मैं दिखाऊंगा, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वेदों का पहला भाग गलत नहीं है, जो बहुत बुद्धिमान पुरुष है वो उसमें से भी भक्ति निकाल लेगा। मगर प्रॉब्लम यह, हम इतने अल्प ज्ञानी है कि हम लोग उस संस्कृत में और उसमें फंस फूस के सेवा भूल जाएंगे। मंत्र बोलते रहेंगे, भगवान की सेवा, अंडा, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है बहुत, मैंने देखा है मध्वा संप्रदाय वाले वेद, तो भी हो सकते हैं, हम तो मठ में आके चैंटिंग करते थे, पूरे दिन वेद पढ़ते, शाम को कैरम बोर्ड खेलते, नहीं खेलते नहीं तो अंदर बैठ के सिगरेट फूकते हैं। मतलब बेसिक चीज उनकी नहीं हटी, बेसिक शुद्ध नहीं हो। इस्कॉन में एक नया व्यक्ति भी शुद्ध हो गया, लेकिन इमेजिन कितनी पावर है, जो मलेच्छ है वो सन्यासी बन गए। ये मध्वा और श्री संप्रदाय के सिस्टम से हो ही नहीं सकता, वो असंभव है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना नहीं हो सकता, जो उन्होंने सिस्टम बनाया उसके बिना नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद ने प्रैक्टिकल बोल दिया, त्रैगुण्य विषय वेद का मतलब है वेदों के पहला भाग छोड़ दो, निस्त्रैगुण बन जाओ। निस्त्रैगुण का मतलब क्या है, तीन गुणों से ऊपर उठ जाओ। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, कि भगवत गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ लो या गीता पढ़ लो, उपनिषद क्या है, भगवत गीता ही है सारे। अब ये हमारे जो गौड़िया वैष्णव आचार्य यही लिख रहे हैं, प्रभुपाद ने तो वही लिखा है ना। सो हमारे एक्चुअली हमारे जो महाप्रभु का मत यही है, प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन है नहीं है। अब जब तुम तीन गुणों से ऊपर हो जाओगे, तीन गुणों से ऊपर भगवत गीता पढ़ोगे तो क्या होगा, तीन गुणों से ऊपर होगा। कहने का मतलब क्या, तीन गुणों से ऊपर होने का मतलब सारी फल की इच्छाएं खत्म हो गई। भाई आप भगवान की सेवा कर क्यों कर रहे हो, सेवा के लिए कर रहे हो। आपको ना स्वर्ग चाहिए, ना आपको धन चाहिए, ना सुख शांति चाहिए, कृष्ण हमें आपके सेवक बनना है। हो गया ना, भगवत गीता पढ़ने का फल क्या है, तीन गुणों से ऊपर उठ गए। और कृष्ण क्या कह रहे हैं, भगवत गीता पढ़ने से क्या होगा, सारे द्वंद्वों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। तीन गुणों से ऊपर उठने का मतलब भगवान खुद बता रहे हैं इसी श्लोक में। जब कोई व्यक्ति रजोगुण तमोगुण सतोगुण से परे आता है तो सारे द्वैत, सारे लाभ, सुरक्षा, ग्रस्तों को जनरली टेंशन होती है ना, हाय क्या होगा, हाय अब क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, इसी में पूरे दिन घूमते रहते हैं। उससे ऊपर उठ जाओगे और आत्मपरायण बन जाओगे। अब इस लाइन का मतलब क्या है, कोई प्रैक्टिकल मतलब कोई बता सकता है क्या मतलब है इसका? ठीक है, मतलब आप कहोगे हम गीता पढ़ रहे हैं और मैं सारे चिंताओं से मुक्त हो गया हूँ, मतलब जनार्दन रूप भी कह सकते हैं आप, तो कोई प्रॉब्लम, तो मैं जो कोई टेंशन नहीं है। मैं कहा प्रैक्टिकली क्या है, मतलब हम टेस्ट कैसे करें, आप बोल तो बहुत कुछ सकते हो, अब टेस्ट कैसे किया जाए। तात्पर्य पढ़ लिया करो, तात्पर्य में आंसर होता है। बाय द वे मेरी शक्ल मत देखो, प्रभुपाद ने लिखा हुआ है तभी गीता दिया आप लोगों को। प्रभुपाद दूसरे पैराग्राफ में लिख रहे हैं तात्पर्य के 45। प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रिया होती रहेंगी। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख शांति ग्रीष्म जैसी द्वैत को सहन करना सीखे, इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। आत्मपरायण बनना, सुख दुख से ऊपर उठना, उसका प्रैक्टिकल मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं कि व्यक्ति कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। शीला प्रभुपाद इंग्लिश में लिख रहे हैं, डिवोटी इज फुली डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ गॉड, विल ऑफ कृष्ण, हिंदी में प्रभुपाद लिख रहे हैं। सो अगर आपको टेस्ट करना है कि आप सारी सुरक्षा की, लाभ की, फल की इच्छाओं से मुक्त हो गए, तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे, हमारे में क्या आ जाएगा, हम कृष्ण की इच्छा पे पूर्ण तरह निर्भर हो जाएंगे। भाई जो कृष्णा चाहते हैं ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कृष्णा मारे अगर कृष्णा मारना चाहते हैं तो भी ठीक है, कृष्णा में जीवित रखना चाहते हैं तो भी ठीक है। सेवा का कर्तव्य है भगवान की इच्छा को पूरी करना। हमारी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस किस पे लगेगा, सेवा पे। हम अपने मेंटेनेंस के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत तो सबको करना ही पड़ता है, ज्यादा टेंशन नहीं लो उस बात की, टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि आगे क्या होगा, पैसे होंगे नहीं होंगे। श्रीला प्रभुपाद ने टेंशन नहीं ली कभी, प्रभुपाद अपने गृहस्थ में थे और पूरी तरह प्रभुपाद का फोकस प्रीचिंग में था। जब प्रभुपाद इंडिया में थे, अब पढ़ लो लीला अमृत, उनकी वाइफ टेंशन करती थी, वाइफ तो नहीं कि आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप पैसे कहाँ से लाओगे, ये वो, मतलब लड़ाई तो होती थी। वो मानने का ठीक है, भगवान पर निर्भर रहो, उसमें क्या है, और चल रहा था सब, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। इसको कहते हैं निर्वक्षेमा आत्मवान। आत्मवान का मतलब है भगवान की इच्छा पे निर्भर रहना। ओके, अब भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं आगे कि निर्भर होने का मतलब क्या है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी तरह वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। भगवान अपने अगले श्लोक में बता रहे हैं कि देखो, एक छोटा अलग अलग कुएं से आप काम करो, एक वो अलग अलग कुएं से काम करने से अच्छा अब नदी पे चले जाओ, नदी पे कपड़े भी धुल जाएंगे, पानी भी पी सकते हो और नहा भी सकते हो। कुएं में नहीं कर सकते क्योंकि कुआ अशुद्ध हो जाता है, नहीं एक कुएं से पानी पिएगा उसमें नहाओगे, उसमें कपड़े धोना ना धोगे, वो तो गंदा हो जाएगा, इसलिए अलग अलग कुएं होते थे। भगवान का कुआं अलग होता था, मगर नदी में सारे काम हो जाएंगे क्योंकि नदी का पानी बह रहा है। इसलिए कह रहे हैं एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत, बंगाल में जाओगे बंगाल में तालाब होते हैं, पुकूर होते हैं, होते नहीं होते बड़े बड़े, वो तालाब में सब कर लेते हैं, वो हो जाता सारा काम। इसलिए भगवान कह रहे हैं इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों का आंतरिक तात्पर्य क्या है? कृष्ण भक्ति। श्रील प्रभुपाद पोपट में लिख रहे हैं अपने, कृष्ण भक्ति आंतरिक तात्पर्य है। सो अगर कोई सेवा में लगा है तो उसको वेद पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वेदों का लक्ष्य क्या है? सेवा ही तो है ना। सो भगवान यहां पे समझा रहे हैं कि देखो भाई, वेदों का जो पहला भाग है जो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए मना किया है, जिसमें वेद कह रहे हैं स्वर की प्राप्ति करो, फल की इच्छा करो, वो जो अल्प ज्ञानी उनको समझ नहीं आता। वैसे तो अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे उन वेदों के भाग को भी, उसमें भी भक्ति है, गलत नहीं है, मगर तुम निकाल नहीं पाओगे। और अगर तुम भक्ति कर ही रहे हो तो पढ़ने की जरूरत क्या है भैया? तुमने जूस ही निकाल लिया अगर संतरे का, तो संतरे की जरूरत ही क्या है? आप ऐसे संतरे से जूस निकल जाएगा अगर तुम्हें निकालना आता है तो निकाल लिया, तो क्या जरूरत है? प्रभुपाद अपने पोपट में बहुत कुछ लिख रहे हैं, प्रभुपाद अपने पोपट में लिख रहे हैं, आप देखो यहां पर, ये देखो यहां पर, ये दूसरे पैराग्राफ में, इसी के तात्पर्य, दूसरे तात्पर्य में, अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्यों को समझे। देख रहे आप, वेदों में अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे, मगर जनरली हम अनुष्ठानों के प्रति आसक्त हो जाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा छोड़ दो अनुष्ठानों को, तुम नहीं कर पाओगे, उसी में फंस जाओगे तुम लोग। आज यहां पे अगर हम यज्ञ करते हैं आप स्वाहा स्वाहा उसी में फंस जाओगे, वो सेवा भूल जाओगे नहीं। सो अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग लोग जाने की कामना ना करें। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है, दूसरी बात है वेदों के यज्ञ पूरी तरह आप कर नहीं सकते, पूरी तरह पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप समझ भी गए यज्ञ से किसको संतुष्ट करना है, विष्णु को, तो मैं यज्ञ करूंगा, आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि सारे विधि विधान पालन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और न सारे वेदांत तथा उपनिषद का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है, वेदांत भी नहीं पढ़ सकते आप, कलयुग में संभव नहीं है वेदांत पढ़ना। वेदांत पढ़ोगे तो गर्दन टूट जाएगी, समझे? नीचे गर्दन देख पढ़ते रहोगे, यहां दर्द हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, पॉसिबल नहीं। एक दो के लिए पॉसिबल हो सकता है, जनरली पॉसिबल नहीं है। जनरली वेदांत पढ़ने वालों को मैंने देखा सेवा नहीं करते, कर सकते हो गलत नहीं है, मगर उसके लिए टाइम भी तो चाहिए ना, टाइम भी चाहिए ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर, वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, समय चाहिए नहीं चाहिए? समय चाहिए। आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत सीखनी पड़ेगी, फिर वेदांत पढ़ोगे, वेदांत पढ़ने के लिए न्याय पढ़ोगे, बहुत मुश्किल है, फिर सारी फिलॉसफीज पढ़ोगे, फिर सब पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या आएगा? झाड़ू मारो मंदिर में। अब क्या करोगे आप उसके बाद? तब तक मर जाओगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ज्यादा फोकस नहीं किया, हमारे आचार्यों ने लिखी है वेदांत पे कमेंट्री, मगर प्रभुपाद ने कहा मत करो, क्योंकि कलयुग में हम बहुत वैसे ही डिस्टर्ब्ड है ना, माइंड वैसे ही डिस्टर्ब्ड है, पूरी तरह काम क्रोध लोभ मोह हजार तो विचार आते जा रहे हैं। एक कोई कर सकता करे, मगर सेवा नहीं छोड़ सकते हम, नहीं, सेवा कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ना प्रचुर समय है, ना शक्ति है, ना ज्ञान है, ना तथा साधन की आवश्यकता, तथा साधन की आवश्यकता होती है। समय भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है करने का। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, वो संभव नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवत नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा नाम लो सीधा, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा की गई है। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, जब चैतन्य महाप्रभु महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि अब वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते रहते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है। मतलब महाप्रभु ने बोल दिया, इसका मतलब नहीं है महाप्रभु मूर्ख थे, मगर महाप्रभु इस युग की युग का धर्म स्थापित कर रहे थे कि यही है। अतः उन्होंने ऐसा किया और वह पागल की भांति भगवत उन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है, और वो जनता कौन है? वो हम ही है, साइड वाला नहीं है। हम अपने अपने को सुपरमैन नहीं समझ सकते। सुपरमैन समझोगे तो कुछ भी नहीं होगा, भगवान की सेवा नहीं होती फिर उससे। मतलब भगवान की सेवा करना भी मुश्किल है ना, भगवान के लिए कुछ करोगे कलयुग में करना बहुत मुश्किल है। कुछ सुनने को भी तैयार नहीं है, सर्विस उसके लिए भी टाइम चाहिए, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित हम नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से होती है, इसीलिए भगवान का नाम लेने से और सेवा करने से कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए भगवान ने उदाहरण दिया है कि जो बड़े जलाशय से होगा वो छोटे छोटे कुओं से पॉसिबल नहीं है। सो आपको किसी को वेदांत पढ़ना तो पढ़ ले, मगर सेवा कॉम्प्रोमाइज ना करे। सेवा होनी चाहिए भगवान की, भगवान का मिशन आगे बढ़ना चाहिए, मिशन बढ़ना चाहिए। कभी भी मर सकते हो आप। अब मैं कल ही मैंने नेट पर देखा था, फिर उसके बाद संकीर्तन प्रभु का मैंने देखा। संकीर्तन प्रभु बहुत अच्छे डिवोटी थे, लोकनाथ महाराज के डिसाइपल। उनको सन्यासी मिलने वाला था अगले महीने, एंड उनको कैंसर हो गया, मर गए। ही लेफ्ट हिज बॉडी। सो टाइम का है। अब आप बताओ, अगर आपकी डेथ आ गई एक महीने में, तो आप चाटोगे वेदांत को? क्या करोगे? आपको पढ़ना है पढ़ो, मगर कुछ भगवान के लिए कर तो लो। क्योंकि भगवान जिसकी सेवा करोगे उससे आसक्ति होगी, पढ़ने से आसक्ति नहीं होती, सेवा करने से आसक्ति होती। नहीं, हमने माता पिता की सेवा की आसक्ति हो गई ना, या माता पिता बच्चे की सेवा करते हैं, आसक्ति होती है? नहीं होती है, है नहीं? सो ज्यादा पढ़ने से आसक्ति नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मदर फादर कहेंगे मैं अपने बच्चे की PhD कर रहा हूं कि उसमें क्या मॉलिक्यूल्स हैं, क्या आसक्ति हो जाएगी? वो तो जब उसके लिए नींद छोड़ेंगे, छोड़ते नहीं छोड़ते हैं, उसके लिए 24 घंटे सोचेंगे कि इसको क्या चाहिए, उसका ध्यान रखेंगे, तब आसक्ति होती है। ऐसे कृष्ण के लिए जब आप कृष्ण के लिए नींद छोड़ोगे, आप बोलोगे अभी मैं कृष्ण के लिए क्या करूं, कृष्ण की इच्छाओं का ध्यान रखोगे, है नहीं, उनके लिए मेहनत करोगे, तब आसक्ति हो जाएगी। इसलिए प्रभुपाद ने बार बार बोला है कि डू समथिंग फॉर कृष्णा, कुछ करो भगवान के लिए। और प्रभुपाद ने देखो बहुत हाई सेट गोल्स किए थे। नहीं, प्रभुपाद ने संकीर्तन प्रभु तो प्रभुपाद ने संकीर्तन प्रभु तो चाइना में प्रीचिंग कर रहे थे ना। चाइना में प्रीचिंग करना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद ने बोला है कि जो प्रभुपाद ने भी बोला है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड में प्रीचिंग करेगा उसके चरणों की धूली में अपने सर पे लूंगा। मुस्लिमों को प्रीचिंग करना बहुत मुश्किल है। ओके, प्रभुपाद हमें क्या मरवाना चाहते हैं क्या? प्रभुपाद को पता है जितनी सेवा में आप मुश्किलें सहोगे उतनी जल्दी अटैच हो जाओगे भगवान से। मुश्किलें आएंगी तो भगवान की शरण लोगे ना, अपने आप सरेंडर करोगे। खाली बैठे बैठे शरण लेने की नीड ही नहीं लगेगी आपको, नहीं लगती ना नीड। अब क्या आप खाली बैठे हो, क्या आप वेदांत पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, फिर उठोगे फिर सो जाओगे? भगवान का आश्रय लेने की नीड जरूरत नहीं। जब मुश्किल आती है ना तब निकलेगी चीख अंदर से, हे कृष्णा बचाओ भाई, मैं गिर गया हूँ मुस्लिमों से, अब क्या करूं, अब तो मारने आ गए। अब वहां पे अगर आप प्रीचिंग करोगे वेदों की तो मरोगे आप। सऊदी अरेबिया में आप नहीं कर सकते हिंदू धर्म का प्रचार। सो उस सिचुएशन में डालने से ये कर्मयोग है। कर्मयोग ज्ञान योग में फर्क है, समझे? अभी सेकेंड चैप्टर में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। भगवान ने ज्ञान योग के ड्रॉबैक्स ही बताए हैं। भगवान ने बताया ज्ञान योग तो ठीक है, ज्ञान योग से कर्म योग तक पहुंचो तो ठीक है। अगर ज्ञान योग में फंस जाओगे आप, ज्ञान योग मतलब समझ गए ना, भगवान को समझना शास्त्र के अनुसार, उसी में फंस जाओगे तो उसमें भगवान बता रहे हैं, आप पीछे पढ़ना, लेक्चर सुन लेना बाद में आकर, और बता रहे हैं उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ज्ञान योग में अगर फंस जाओगे तो, एक तो अहंकार कि मुझे बहुत कुछ आ गया। दूसरी बात है भगवान कह रहे हैं आलस्य, आलसी बन जाओगे, क्योंकि जहां एक्शन नहीं होगा वहां पे एनर्जी आएगा नहीं, आलसी बन जाएंगे ना, बैठे 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 पढ़ पढ़ते 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 माइंड ठस हो जाएगा, फिर आपका मन ही नहीं करेगा कुछ करने का भगवान के लिए। वो हो जाता नहीं होता, एक एनर्जी आ जाता है, फिर आप फिलोसफी डिस्कस करोगे बड़ी बड़ी, कुछ करोगे नहीं, बड़ी बड़ी बात हो रही है, हरि नाम के लिए नहीं जा रहे, लो भाई ये हो जाता है, फिर हो जाता, सीरियसली हो जाता है, मतलब सो गड़बड़ जाती है उसमें। सो भगवान दो ड्रॉबैक्स बता रहे हैं, गलत नहीं है ज्ञान योग, मगर उससे कहां पहुंचना है, कर्म योग तक। भगवान की सेवा होनी चाहिए, दैट्स द आइडिया। समझे नहीं समझे? सो अगर सेवा ज्ञान के साथ हो तो सोने पे सुहागा, नहीं है नहीं। अगर आप पढ़ भी सकते हो, सेवा भी कर रहे हो, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। मगर अगर चूज करना है आपको ज्ञान योग और सेवा में, तो क्या चूज करोगे? तो सेवा कर लो, एटलीस्ट वो तो हो गई, मरने से पहले पता लगा पढ़ पुढ़ के आपने सेवा नहीं की, फिर तो आसक्ति भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अब ज्ञान से आसक्त हो गए, कृष्ण से आसक्त नहीं हुए, प्रॉब्लम वहां पे ये हो गई। तो आइडियल, इसलिए पता क्या है, इसलिए यही चैप्टर है, थर्ड चैप्टर क्या है। अब सेकंड चैप्टर में जो भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं वो समरी कर रहे हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में इसी को भगवान डिटेल्स में करेंगे, हमने डिस्कस किया ना। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय का नाम क्या रखा, कर्मयोग, चौथे अध्याय का नाम ज्ञान योग, और पांचवें अध्याय का नाम ज्ञान के साथ कर्म करना। कर्मयोग हमेशा श्रेष्ठ है ज्ञान योग से, इसलिए कर्मयोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर भगवान ने कहा नहीं भी, मगर अगर तुम कर्मयोग करोगे बिना नॉलेज के तो फिर तो वो भी ठीक नहीं है इतना, तो नॉलेज लो, मगर सबसे बेस्ट है, मगर उस चक्कर में सेवा मत भूलना, और सेवा को ज्ञान के साथ फिर करते रहो, वो बेस्ट है। समझ के करोगे तो ज्यादा अच्छा है ना, ज्यादा अच्छा है। और समझना क्या, हमें समझना गीता काफी है, वेदों के चक्कर में मत फंसो, शक्ति नहीं है, नहीं कर पाओगे, गीता पढ़ो। ओके, समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो गीता तो आनी चाहिए आपको, लॉ बुक की तरह। अब ये नहीं है कि आप वेद भी ना पढ़ो, गीता भी ना पढ़ो, और वो गड़बड़ है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं जो भगवान बता रहे हैं वो तो आपको हर एक श्लोक, हर लाइन आपको पता होनी चाहिए पर्पट की, तब बात बनेगी। गीता तो रटी होनी चाहिए, तब समझ आएगा ना क्या कर रहे हैं हम। ये श्लोक तो सबको आते हैं, कर्मन ने बाधे का रस्ते माँ फले शुभाचन माँ कर्म फल है तो भोर माते संगस्त कर्म नहीं। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों को तुम्हें अधिकार, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने के कभी भी आसक्त हो। सो क्या मतलब है, प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं यहां पर कि भगवान कह रहे हैं कर्म करने पर अधिकार है, कर्म के फलों को तुम्हें अधिकार नहीं है। अब ये श्लोक किस कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, सेवा के कॉन्टेक्स्ट में, समझे समझे ना, कर्मयोग के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है ना। अब इस श्लोक को ऐसे निकाल लो तो लोग अब बोलते रहते हैं, हाँ भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस ये अपना जॉब करते रहो, बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है कर्मयोग की। सो कर्म सेवा की, तो सेवा, भगवान सेवा एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, सेवा सेवा पे अधिकार है, सेवा के फल पे अधिकार नहीं है, ये समझा रहे हैं भगवान। सेवा का फल क्या है, तो मतलब क्या है इसका, सेवा के फल पे अधिकार नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, सेवा का फल क्या है फिर, मतलब प्रेम है, प्रेम है ना सेवा का फल। भगवान कह रहे हैं सुख शांति है, भगवान की प्राप्ति है, ये सारे फल है ना सेवा के, तुष्यंति च रमन्ति च, संतुष्टि है, आनंद है, यही कह रहे हैं ना गीता में, माम उपयन्ति ते, मेरी प्राप्ति है, यही सब है ना। तो भगवान कह रहे हैं मगर उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसका मतलब क्या है, क्या करोगे? नहीं, अधिकार नहीं है मतलब कि इसको भोगो मत। सेवा करने से आनंद तो आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, मगर उस आनंद में खो मत जाना, उसको अपने लिए मत रखो, उस आनंद को मुझे अर्पण कर दो। अर्पण कैसे करोगे, और सेवा कर दो भी, आप सेवा करने से आनंद आ रहा है ना, तो क्या सोचोगे कौन आनंद दे रहा है मुझे, कृष्णा आनंद दे रहे हैं, कृष्णा इतने अच्छे हैं, अब मैं उनकी क्या करूंगा, डबल सेवा कर दूंगा। आपने भगवान को सेवा दी, भगवान ने आपको आनंद दिया, आप इसके बदले भगवान को और डबल सेवा दे दो, तो आपने फल नहीं रखा ना अपने पास, यही हो गया ना भैया। आपने 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 किसी के एम्प्लॉय किया, उसने आपको पेमेंट दी, आपने उसकी सर्विस की, उसने आपको पेमेंट दी 10,000 रुपए, आपने 10,000 रुपए लेके उसको इन्वेस्ट करके उसको 20,000 लुटा दिए, तो आपने फल अपने पास नहीं रखा ना फिर, तो तो यही बात है। तो कृष्ण, इसलिए कृष्ण प्रेम भक्ति का फल है, सेवा का फल है। जब प्रेम मिल जाएगा तो क्या करेंगे हम, तब फिर हम डबल सेवा कर देंगे। तो भगवान कह रहे हैं गीता में, आप पढ़ना पहले दूसरे अध्याय में आगे, पहले अभी तो नहीं, कृष्ण प्रेम का लक्षण ही बता रहे हैं भगवान। कृष्ण प्रेम का लक्षण है कि सेवा करता है व्यक्ति। कृष्ण प्रेम में भक्त की सेवा की दृष्टि इतनी बृहत हो जाती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे प्रभुपाद, प्रभुपाद क्या सोच रहे थे, प्रभुपाद सोच रहे थे कि मैं चींटी को भी भक्त बना दूंगा। ये होता है प्रेम। हम क्या सोचते हैं कि बड़बड़गंज में प्रीचिंग कर देंगे, बस काफी है, हमारा दायरा इतना ही है, क्योंकि हमें प्रेम नहीं है ना भगवान से। प्रभुपाद को प्रेम है, प्रेम में व्यक्ति, प्रभुपाद तो सोच रहे हैं पूरे ब्रह्मांड को मैं भक्त बना दूंगा, उनकी थिंकिंग ही अलग चल रही है। जैसे हम पढ़ रहे थे वो राजऋषि का, प्रभुपाद अपने डिवोटीज को बोलते थे कि पूरे संसार में मेरी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पूरे विश्व में सेंटर खोल दो। प्रभुपाद प्रेम में व्यक्ति बड़ा बड़ा सोचता है, सोचता नहीं सोचता है। जैसे
बिजनेस थोड़ी बढ़ा रहे
जैसे ऐसे सोचते हैं नहीं, जैसे वैसे जो जो जिसका प्रेमी होता है तो कहता है नहीं कि मैं तुम्हारे लिए तारे भी तोड़ के ले आऊंगा। अब वो तारे का तोड़ के ला रहा है, वो इंडिया गेट में बेंच पे बैठा है, उससे कह रहा तेरे तारे तोड़ के ले आऊंगा, पागल है क्या? मगर वो प्रेम है, प्रेम में व्यक्ति बहुत बड़ा सोचने लगता है, अपने आप सोचने लगेगा। यही कहते हैं ना, तेरे लिए महल बना दूंगा, पूरी दुनिया का धन ले आऊंगा। तो वो यार इसको प्रेम का लक्षण नहीं है, समझ गया नहीं समझ गए? प्रेम का लक्षण है नहीं आप रो रहे हो, बेहोश हो रहे हो, वो हो सकता है, या नाच रहे हो कूद रहे हो, वो लक्षण नहीं है। प्रेम का लक्षण ये है, ममता अतिशयांकिता। भगवान कह रहे हैं पिछले श्लोकों में, आपको दिखाऊंगा, भगवान गीता में बता रहे हैं प्रेम के लक्षण, वो चले गया पीछे। बट एनीवे भगवान कह रहे हैं कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। सो अब बताए इसमें पॉइंट क्या, फल पे अधिकार कब नहीं होगा? आपको भगवान सेवा का फल मिलेगा, आप आसक्त हो ही जाओगे, नहीं फंस जाओगे ना उसके अंदर। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं पपट में कि फल पे, फल से आसक्ति तभी हटेगी जब हम किससे आसक्त होंगे, जब भगवान की सेवा से आसक्त होंगे, वरना फंस जाओगे आप, वरना फंस जाओगे। इसलिए भगवान कह रहे कर्म पे अधिकार है। अधिकार का एक और मतलब क्या होता है, आसक्ति। आसक्ति हुआ ना भाई, तुम्हारा इस चीज पे अधिकार है, तुम अपने पास रखो, संभाल के रखना, आसक्त हो गए ना। सेवा से आसक्त हो, सेवा के फल से आसक्त मत हो, ये समझा रहे हैं। अधिकार का मतलब आसक्ति, इसलिए प्रभुपाद आसक्ति की ही बात कर रहे हैं पपट में। कर्म के फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण होता है, कर्म के फलों से आसक्त। अधिकार का मतलब समझे अब क्या हुआ, आसक्ति हुआ। अधिकार का मतलब भी अभी आपको समझ नहीं आ रहा था, नहीं आसक्ति अधिकार का मतलब। सेवा से आसक्त होना बहुत बहुत अच्छा है, सेवा से आसक्त हुए बिना आप सेवा के फलों में फंस जाओ, समझे? और संगस्त्वा कर्मणि, और अकर्म से कभी आसक्त मत हो। सेवा ना करने से कभी भी आसक्त, सेवा से कभी भी दूर मत भागो, सेवा करो भगवान की। कुछ ना कुछ शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, अकर्म तो पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याण मार्ग था। इस सात परे की आखिरी लाइन में प्रभुपाद लिख रहे हैं, समझे? सो हमें किससे आसक्त होना है, सेवा से। अब शिला प्रभुपाद ने लेटर्स में लिखा है, प्रभुपाद एक्चुअली एक माता जी थी, उन्होंने प्रभुपाद को लेटर लिखा कि प्रभुपाद मैं तो पूरे दिन टाइप राइटिंग करती रहती हूँ, टाइपराइटिंग, प्रभुपाद की बुक्स की टाइपराइटिंग। उस दिन तो कंप्यूटर नहीं थे ना, कंप्यूटर से कर देते। तो प्रभुपाद मैं तो ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाती, तो प्रभुपाद ने उनको लिख के भेजा कि देखो तुम टाइपराइटर से आसक्त हो जाओ, तुम टाइपराइटिंग से आसक्त हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी क्या है, सेवा है। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो अर्जुन, तुम्हें युद्ध पूरे मन से करना चाहिए, तुम युद्ध से आसक्त हो, यही कह रहे हैं ना अल्टीमेटली। युद्ध करो अच्छी तरह, ये मेरी सेवा है, मन लगा के करो पूरी तरह। प्रभुपाद ने कहा तुम टाइपराइटिंग, तुम कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम पूरे मन लगा के करो, वो तुम्हारी सेवा है, क्योंकि भगवान की सेवा और भगवान में कोई अंतर होता ही नहीं। सो भगवान एक्चुअली यहां पर ना, ये थोड़ा सा भगवत इसलिए थोड़ी डिफरेंट है, भगवद्गीता में भगवान ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया, क्योंकि भगवान के आने से पहले लोग सोचते थे, जैसे अर्जुन सोच रहा था कि भी वेदांत पढ़ो, वेद पढ़ो, यज्ञ करो, भगवान ने बिल्कुल उसको उल्टा कर दिया। भगवान ने भक्ति की स्थापना कर दी, और भक्ति में जनरली चीजें उल्टी हो जाती है, नहीं, भगवान ने कहा एक्शन करो, खाली मत बैठे रहो, अकर्मणी सेवा से जी मत चुराओ। भगवान ये कह रहे हैं, अर्जुन जी चुरा रहा है ना सेवा से, युद्ध से, यही है ना युद्ध, उसकी सेवा है ना अभी। मैंने कहा सेवा से जी मत चुराओ, सेवा करो। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी सेवा करने को बोला। भक्ति से अंत भी अपने मठ में पढ़ने ज्यादा अलाउ नहीं करते थे, वो तो क्या चैंटिंग भी अलाउ नहीं करते थे ज्यादा, वो तो कहते चैंटिंग करना है कर लो, सेवा करो, उनका आइडिया था सेवा, क्योंकि सेवा भाव नहीं आएगा तो चैंटिंग भी अच्छी तरह नहीं हो पाएगी। इसलिए वो थे ना आपके भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, पहाड़गंज में उन्होंने मठ खोला था, तो बोलते थे कि भक्ति संध्या का किसी याद बुक्स देखते थे तो ले लेते थे उनसे, वेदांत और बहुत हाई फाई बुक्स जो पढ़ते थे ना लोग आचार्यों की, कहते वापिस अभी दिल्ली जाकर फंड कलेक्शन करो। तो वो दिल्ली आके फंड कलेक्शन मठ बनाने के लिए कभी राजस्थान जा रहे हैं, कभी जोधपुर जा रहे हैं, फंड कलेक्शन कर रहे हैं। क्यों करा रहे हैं वो ऐसा? हमेशा लोन में रख के चले जाते थे मठ को। और वैसे शीला प्रभुपाद ने भी सेम चीज की, मैं देख रहा था एक्चुअली सेम चीज। प्रभुपाद ने जो अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं जितने भी, अब देखोगे प्रभुपाद, देखो प्रभुपाद अपना अकाउंट रखते थे और उनका अकाउंट अलग रखते थे। प्रभुपाद ने बीबीएट अकाउंट अलग रखा था। प्रभुपाद बीबीटी पता है ना, प्रभुपाद बुक्स, प्रभुपाद कहते थे देखो अभी तुम्हारा अकाउंट अलग है बीबीटी का, बुक डिस्ट्रीब्यूशन वालों का, प्रचारों को जो था प्रचार जो करते थे हर मंदिर का अकाउंट अलग था। तो प्रभुपाद कहते थे ठीक है, तुम्हें कोई किसी मंदिर को सपोज पैसे चाहिए प्रीचिंग के लिए, तो प्रभुपाद कहते थे ठीक है तो तुम मुझसे लोन ले लो। प्रभुपाद लोन देते थे, प्रभुपाद ये नहीं कहते थे कि मुझसे ले लो। अब किसकी संस्था है? प्रभुपाद की संस्था है। सेम एग्जैक्ट जो उनके गुरु ने क्या उन्होंने किया है प्रभुपाद ने, एग्जैक्ट। प्रभुपाद ने कुछ चेंज नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया। उन्होंने सेवा पे फोकस किया, प्रभुपाद ने सेवा पे फोकस किया। प्रभुपाद ने कहा काम करो अभी जाके। वो लोन लगते थे बैंक से, प्रभुपाद लोन देते थे, फिर प्रभुपाद कहते थे तुम मुझे लोन वापस करो। और लोन वापस कैसे करोगे? तुम मेरी किताबें डिस्ट्रीब्यूट करो, उससे पैसे कमाओ, और वो लोन वापस करना मुझे। और फिर जो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो बुक प्रिंटिंग की थी, बीबीटी, बीबीटी है बुक प्रिंटिंग, इस्कॉन की बुक प्रिंटिंग को बोलते हैं बीबीटी, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट। तो जब वो आते थे कि प्रभुपाद आपकी बुक्स प्रिंट करनी, प्रभुपाद कहते मुझसे लोन ले लो। अब कोई भी कोई रिवोल्ट नहीं कर देगा, कहेगा प्रभुपाद आपकी बुक प्रिंट कर रहे हैं यार, हमें लोन दे रहे हो। हाँ, मतलब नॉनसेंस है ये तो। प्रभुपाद की बहुत सारी वीडियोस हैं, प्रभुपाद लोन दे रहे हैं, गारंटी। एक्चुअली एक डिवोटी, आई थिंक गोपाल कृष्णनाथ से बात हो रही थी कि ठीक है तुम बीबीटी चला रहे हो तुम्हें कितना लोन चाहिए? उन्होंने कहा प्रभुपाद 1,00,000 रुपए चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है 1,00,000 रुपए कितने दिन में मुझे वापस करोगे पहले बताओ, तब मैं दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभुपाद हमारे पास अभी पैसे नहीं है, हम कैसे देंगे आपको? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं मुझे 1 महीने में वापस चाहिए, चाहे जैसे ही करो। हाँ टाइम फ्रेम, प्रभुपाद बिजनेस, प्रभुपाद के हिसाब से कृष्णा कॉन्शियस बिजनेस था, सीरियसली बिजनेस था प्रभुपाद बिजनेस की, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा हम कृष्ण के लिए बिजनेस कर रहे हैं ना। अगर प्रभुपाद कहते तुम जो भी कुछ कर ले हो, जो भी वो भी करता रहे, वो भी करता रहे, तो आज मूवमेंट ही नहीं होता, 10 साल में नहीं हो सकता था। हाँ 100 साल में हो जाता, 10 साल में नहीं हो सकता था। जो प्रभुपाद ने 10 साल में खड़ा कर दिया, हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। बड़े बड़े संत आके चले गए, 10 साल में कोई नहीं कर पाया। मतलब मध्वाचार्य रामानुचार्य भी नहीं कर पाए, अगर उनकी बात भी कर लो, पूरे जीवन लग गया उनको श्रीरंगम खड़ा करने में। मध्वा को पूरा जीवन लग गया उडुपी मठ खड़ा करने में। प्रभुपाद ने 10 साल में कर डाला पूरे विश्व में। मतलब इसलिए तो प्रभुपाद को कई लोग शक्त अवतार ही बोलते हैं, मतलब वो तो आते ही कहते हैं प्रभुपाद को ऑर्डिनरी थोड़े हैं, इम्पॉसिबल है ना, ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ ना कभी होगा। मतलब चतनाभु के सेनापति है ना प्रभुपाद, सब वो कैसे होना था प्रभुपाद, ये सिस्टम नहीं होता, नहीं हो सकता था। तो प्रभुपाद ने बोला कितने में? तो गोपाल कृष्ण आने का प्रभुपाद 1 महीने में तो संभव ही नहीं है, हम कैसे देंगे? तो बंदे कुछ भी करो, तुम टेंपल्स से वहां से बुक डिस्ट्रीब्यूट करवाओ, डोनेशंस कलेक्ट करो, करो, मुझे अपने पैसे चाहिए, मेरे पैसे हैं। प्रभुपाद हमेशा कहते थे मेरे पैसे हैं, कहते मेरे पैसे। और तमाल कृष्ण महाराज कभी कभी प्रभुपाद से चाबी नहीं होती वृंदावन में, तमाल कृष्ण, तो प्रभुपाद बीमार थे तो गोपाल ने बोला तमालकृष्ण महाराज, तमालकृष्ण जाके मेरी अलमारी से लेके आ जाओ सामान। तमालकृष्ण महाराज ने चाबी कहा है, गोपाल ने कहा कि चाबी है मगर मैं तुम्हें दूंगा नहीं। तमालकृष्ण महाराज बोल रहे थे, अपने मन में सोच रहे थे कि बाद में बोल रहे थे कि प्रभुपाद तो हम पे विश्वास नहीं करते, हमने प्रभुपाद को सारा जीवन दे दिया, प्रभुपाद हम पे विश्वास नहीं कर रहे। मैंने कहा तुम लोगों को नहीं दूंगा मैं। प्रभुपाद खुद उठ के गए, चाबी निकाली। प्रभुपाद की अलमारी पता कैसी थी, प्रभुपाद ने चाबी से अलमारी खोली, फिर अलमारी में दूसरी चाबी से एक ड्रॉर खोला, फिर उस ड्रॉर में एक और चाबी थी वो निकाली, उससे लॉकर खोला, फिर उसके अंदर प्रभुपाद की चेकबुक थी, उनके अपने पैसे, और प्रभुपाद ने लोन दिया उससे और अंदर रखा। प्रभुपाद ने कहा मुझे 15 दिन में चाहिए वापस, मेरे पैसे हैं वो। सो हाउ डू यू थिंक, मतलब व्हाट डू यू थिंक, मतलब प्रभुपाद क्यों कर रहे हैं ऐसा? प्रभुपाद के आ सकते हैं? अगर आप कहो नॉनसेंस है तो, अगर आप कहो अपने पैसे तो वो तो कोई पॉसिबल नहीं है। मतलब ऑफकोर्स प्रभुपाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद को पता है कि अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी तो वो आगे वो सेवा से आ सकते नहीं होंगे। सेवा से आ सकता होना जरूरी है। अगर प्रभुपाद पैसे देते रहे तो काम चल रहा है, वो खुद कमाएंगे ना भगवान के लिए तब आ सकते। जिसके लिए कमाओगे ना उससे आसक्ति होती है, होती नहीं होती है? बच्चे बीवी के लिए कमाते हैं उससे आसक्त होते नहीं होते हैं? सेम प्रिंसिपल वहां लगेगा और कुछ, यही कर्मयोग है, कर्मयोग यही है बस। इसलिए भगवान ने कर्मयोग ज्ञान योग से ऊपर है। आप पढ़ते रहो वेदांत, कभी आसक्त नहीं होगे, कभी आसक्त नहीं होने वाले, क्योंकि वेदांत पढ़ने का सारा रिजल्ट ही है सेवा करना है ना आपको, आसक्त हो जाओगे। तो प्रभुपाद ने उनको ऐसे इतना जकड़ दिया चीजों में कि उनको भगवान की सेवा करनी, अब नींद ही नहीं, सो नहीं सकते, भी वापस करना पैसे, क्या करोगे, टाइम ही नहीं है। तो करते 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 लोग आसक्त हो गए, आज सन्यासी है, है नहीं है, इतने बड़े शुद्ध भक्त हैं।
उस टाइम तो पूजी इसको हमने अध्यात्म के लिए बहुत हाई थी, नहीं तो हमारे तरफ से भाग जाते कि यार देंगे
नहीं। एक्चुअली हाई प्रभु, हाई एक्चुअली देखो उनके उनके उनकी उनके पॉइंट पॉइंट ये था कि वो प्रभुपाद ने बोले ऐसे देवा परा भक्तिर यथा देवे तथा, उनको पूरा विश्वास था प्रभुपाद की बात। अब वो बात है कि वो आचार्य थे तो उनकी बात पे विश्वास था, कई लोगों को विश्वास नहीं था प्रभुपाद के, प्रभुपाद को कई लोग छोड़ के भी गए हैं, 60% लोग छोड़ के गए प्रभुपाद को, ऐसी बात नहीं है, कई लोग छोड़ के गए, आई मीन टू से कई बड़े बड़े जो अपने को स्कॉलर समझ लेते सब छोड़ के चले गए प्रभुपाद को, नहीं नहीं टिके वो। तो कई लोग आए भी हैं, अब हम तो वो देख रहे हैं जो आए हैं, हम वो नहीं देख रहे ना जो गए हैं, हमने उनको तो नहीं देखा ना। जिन्होंने फेथ किया वो आगे बढ़ गए, जिन्होंने फेथ नहीं किया जो अपने एजेंडा में पड़े रहे वो सब चले गए, वो भगवान से आसक्त हो ही नहीं पाए। सो अभी भी सेम चीज है, आप प्रभुपाद की बात पे विश्वास कर लो आगे बढ़ जाओगे। विश्वास थोड़ा आदमी के होने से ना होने से कुछ नहीं होता, वो तो अब आप सही कह रहे हो, वो एडवांस थे तो वो उन्होंने विश्वास कर लिया, हम लोग एडवांस नहीं है तो हम विश्वास नहीं कर पा रहे। आप इस जीवन में कर लो, अगले जीवन में करो, करना तो यही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी भगवान के लिए, वरना आप एडवांस नहीं कर, आप आसक्त हो गए नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म तो यही है। तभी तो हम क्लास कर रहे हैं कि हम सुन के समझ जाए ये चीजें और फिर भगवान की सेवा करना शुरू कर दें। और कुछ प्रभुपाद ने लिखा है पता है, प्रभुपाद ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जो एम्स नहीं है इस्कॉन के, वहां ने लिखा है कि लीडर्स को अपने डिसाइपल, अपने जो शिष्य हैं उनको चैलेंज में रखना चाहिए, हमेशा चैलेंज देना चाहिए। चैलेंज नहीं दोगे तो कुछ काम नहीं होगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना वो काम करेंगे ना वो आ सकते होंगे, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंज होना चाहिए। अब वो लीडर को, वो लीडर क्रिएट करता है चैलेंज, जैसे प्रभुपाद ने क्रिएट कर दिया ना, लोन देना शुरू कर दिया। अब वो बात है कि प्रभुपाद, एक्चुअली प्रभुपाद ने पता है टेक्निक चली, प्रभुपाद को जो लोग छोड़ के जा रहे थे ना, प्रभुपाद ने उनके बारे में सोचा नहीं जाता। अब अगर आप सोचते रहो जो छोड़ के चला गया यार क्या, उसी में अटके रहोगे तो नहीं होगा। प्रभुपाद की स्पीड इतनी आता थी, प्रभुपाद जोड़ते गए लोगों को, उसमें से प्रभुपाद को पता था जाएंगे भी। प्रभुपाद ने खुद ने बोला है मुझे आश्चर्य नहीं है कि मूवमेंट कोई छोड़ के जा रहा है, क्योंकि मुझे पता छोड़ के जाएंगे, यहाँ पे अपने आइडियाज होते हैं, मगर जो टिक जाएगा वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सो कई लोग आए कई लोग जाए, कुछ लोग टिक गए, गिरिराज महाराज, उन्होंने जूहू के लिए काम किया, मतलब वो तो जान पे हथेली हो गई ना, मतलब जूहू टेम्पल आपको पता ही कितना मुश्किल था, वो आज सन्यासी हैं, मतलब भगवान से आ सकते हैं।
वो आचार्य हैं जितने भी इस्कॉन में अभी हैं, बीस घंटे सेवा कर रहे हैं, रात में मंदिर, सुबह वो सुबह आए।
हाँ तो ठीक है, तो पॉइंट तो ठीक है, कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रेंड है ना, प्रभुपाद ने उनको ट्रेनिंग ऐसी दी ना, इसलिए कर रहे हैं।
हम लोग एक दिन सेवा करते हैं जन्माष्टमी के, 10 दिन में मास,
so, और वो तो ठीक है, वो सब ट्रेंड है प्रभुपाद के द्वारा। ये सेम चीज वो गीता को प्रैक्टिकली फॉलो करके दिखा रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं ना सिर्फ, हम तो अपने स्कॉलरलीनेस झाड़ रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, करने से रिजल्ट आ जाएगा, काम खत्म यार, सिंपल हो गया। अब करोगे तो आ जाएगा, स्विमिंग की किताब पढ़ते रहोगे स्विमिंग आ जाएगी, बिना किताब पढ़े भी आ जाएगी अगर कूद के आप हाथ पांव चलाने लगो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ऑफ कोर्स कुछ बेसिक्स भगवान ने दे दिया हमें गीता में, ये किताब काफी है बस, अब कुछ करो। समझे नहीं समझे? सो सेवा ना करने से आसक्त, सेवा से जी मत चुराओ। अर्जुन जी चुरा रहा है, मान युद्ध नहीं करूंगा मैं, जंगल में आके वेदांत पढ़ूंगा, वेद पढ़ूंगा। भगवान ने कहा स्टूपिड, सेवा का अवसर बार बार भी नहीं आता, बूढ़े आओगे, कुछ करना चाहोगे तो कर भी नहीं पाओगे, कर लो क्यों नहीं,
ठीक बात है,
नहीं कर पाओगे, अब सोचोगे तब भी नहीं कर पाओगे, हजार झंझट है ना। इसलिए प्रभुपाद ने बार बार अपने डिसाइपल से कहा अभी यंग हो, प्रभुपाद बोलते थे अभी यंग हो, अभी अपनी शक्ति लगा दो भगवान में, अभी यंग हो ना, अपनी शक्ति इस्तेमाल कर लो, बहुत जल्दी आ सकते हो जाओगे, तभी तो कह रहे कुमारम आचरित प्रज्ञो, बचपन से करो, बचपन से शक्ति है भगवान में लग जाएगी, आ सकते जाओगे, काम खत्म हो गया, फिर बड़े हो गए सब खत्म हो गया, समय शक्ति सब खत्म हो गया, क्या करोगे फिर, तो हाय पेट में दर्द हो गया, हाय पेट में दर्द, दवाई खाते रहोगे, क्या होगा फिर। सो यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर कृष्णा। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग, वैसे मोदी कहते था ना, ये नहीं, नेक्स्ट है योग कर्मसु कौशलम, हो तो आगे आ रहा है। जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। कर्म कर, कर्म मतलब सेवा, यहां पे सेवा की बात चल रही है ना, मतलब सेवा में आप ये मत सोचो कि आप सक्सेसफुल हो गए, या मतलब ये प्रोग्राम कर रहे हो यार, प्रोग्राम से कुछ नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ये मत सोचो, करो बस, कुछ ना कुछ हो जाएगा। पहले सोच लोगे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा, बैठे रहोगे, खाली बैठे रहोगे। जय विजय के बारे में मत सोचो, ये सोचो कि मुझे करनी है सेवा। प्रभुपाद 30 साल करते नहीं थे, किया ना प्रभुपाद ने, अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद ने 30 साल प्रीचिंग की, कोई रिजल्ट नहीं, जीरो रिजल्ट। आप पढ़ लो, एक डिसाइपल बना था, वो भी झांसी में, कौन थे वो, इंडियन, और वो भी प्रभुपाद से आर्ग्यू करता प्रभुपाद बना ही नहीं, मगर प्रभुपाद 30 साल। भगवान इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि सेवा का, इसका मतलब ये नहीं सेवा का रिजल्ट नहीं आना चाहिए। प्रभुपाद ये भी पूछते थे कि रिजल्ट क्या है अभी, तुमने प्रीचिंग की रिजल्ट क्या है, प्रभुपाद पूछते थे हमेशा, रिजल्ट भी तो आना चाहिए, आप करते जा रहे हो रिजल्ट, मगर पॉइंट है जब रिजल्ट नहीं आए तो निरुत्साहित मत हो। इसलिए भगवान कह रहे हैं जय तथा पराजय की आसक्ति त्याग दो, ये नहीं कि जय विजय की, अर्जुन ऐसा नहीं कि अर्जुन पराजय होना चाहता है, अर्जुन विजय से तो आसक्त होना पड़ेगा तभी तो जीतेगा, मुझे विजय चाहिए है ना, हम प्रीचिंग कर रहे हैं हमें लोग चाहिए है नहीं चाहिए, मगर प्रॉब्लम यह है, आसक्ति में प्रॉब्लम है कि अगर विजय नहीं मिलती तो निरुत्साहित हो जाते हैं। हमें विजय किसके लिए चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए, इसलिए भगवान कह रहे हैं आसक्त मत हो, अपने लिए आसक्त मत हो, अपने लोगे तो निरुत्साहित हो जाओगे, करते रहो बस, बस करते रहो, कभी ना कभी रिजल्ट, भगवान जब चाहेंगे तब रिजल्ट आ जाएगा, नहीं भगवान नहीं चाहेंगे तो आप करते रहोगे तब भी रिजल्ट नहीं, इसका मतलब हम करें नहीं क्या, करना प्रिपरेशन है, प्रिपेयर हो रहे हो ना, फिर जब भगवान चाहेंगे आ जाएगा रिजल्ट, उसमें क्या है। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आसक्त मत हो, समभाव से अपना कर्म करो, समभाव मतलब कि पूरे स्थिर मन से, कि संभव मतलब हर स्थिति में सेवा देखो, सेवा पे फोकस रहो, सेवा करते रहो। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं संभव का मतलब, उसी को क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं योग, वो ही योग है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त घृणित कर्मों से दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो, जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वह कृपण होते हैं। दूरे न हे वरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय, अपनी बुद्धि से गंदे कामों से सेवा के वक्त गलत कामों से, गलत काम होते नहीं होते हैं मंदिर में भी, सेवा करते हैं फिर डोनेशंस आती है और फिर डोनेशंस को सब्जी बना के खा जाते हैं, पता भी नहीं लगता पचा जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि लगा के गलत कामों से दूर रहो। गलत काम क्या है यहाँ पर, गलत काम का मतलब क्या हुआ, गलत काम का मतलब क्या है यहाँ पर, गलत काम का मतलब, गलत काम का मतलब है जो सेवा में रुकावटें हैं। मैंने बताया था ना विकर्म क्या होता है, पाप वो हर चीज है जो कि सेवा में रुकावट है। उन गलत कामों से दूर रहो, अपनी बुद्धि लगाओ सेवा के अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है। सेवा के अनुकूल प्रतिकूल किसको पता लगेगा, कैसे पता लगेगा सेवा के अनुकूल क्या प्रतिकूल क्या, मुझे बताना। वेल, सेवा करके ही पता लगेगा, जो सेवा नहीं करेगा उसको अनुकूल प्रतिकूल नहीं पता लग सकता। लिस्ट तो है, वैसे शास्त्रों में लिस्ट दी है, मीट खाना इलिसिट सेक्स ये सब प्रतिकूल है ना, चैंटिंग अनुकूल है, चैंटिंग तो सेवा ही है, मगर पॉइंट ये है कि और सेवा, फिर सेवा करते वक्त आपको खुद ही समझ आएगा कि सेवा के अनुकूल प्रतिकूल क्या है। ऐसे बिजनेस करने के लिए पहले ट्रेनिंग होती है, नहीं होती है, बिजनेस स्कूल में बता देते हैं कैसे करना है, मगर जब बिजनेस करते हैं तब एक्चुअली पता लगता है फील्ड में कि एक्चुअली रियली में क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, ऐसे नहीं पता लगता। आपके सीएमए भी ऐसी है, आप पढ़ लो ट्रेंड हो गए, मगर जब तक करोगे नहीं तब तक असली में नहीं पता लगेगा क्या चल रहा है। तो सेवा को ही पता लगता है कि एक्चुअली अनुकूल प्रतिकूल क्या, सेवा नहीं करोगे तो कभी पता नहीं लगेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं उसको बुद्धि से, बुद्धि 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 होगा, हम कह रहे हैं ना बुद्धि होगा धनंजय, और बुद्धि कैसे मिलती है, भगवान क्या कह रहे हैं, दामी बुद्धि प्रभुपाद उसके पॉपट में लिख रहे हैं 10th चैप्टर में, जो मेरी सेवा करता है उसको मैं बुद्धि देता हूँ। सेवा करोगे सेवक बनोगे तो भगवान बुद्धि दे देंगे कि सेवा के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, समझा देंगे खुद। और इस तरह से कंजूस मत बनो, कंजूस मतलब कृपण की भांति अभोग व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। कंजूस मत बनो, कंजूस वो होता है जो जो अपनी प्रभुपाद लिख रहे हैं जो अपनी शक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा। भगवान एक्चुअली ज्ञान योग को कंजूस कह रहे, समझे, क्योंकि ये चैप्टर क्या चल रहा है ज्ञान योग और कर्मयोग में, एक्चुअली भगवान कंपेयर कर रहे हैं, इसके पहले श्लोकों में कंपैरिजन चल रहा है। तो ज्ञान योग भगवान कह रहे हैं ज्ञान योग कंजूस है, बैठे बैठे पढ़ते जा रहे हैं, उनकी शरीर की शक्ति क्या हुई वो तो नहीं लगा रहे ना भगवान की शरण में, सो कंजूस है। भगवान कह रहे कंजूस अपनी शक्ति लगाओ भगवान की सेवा में क्या है। ओके सो वेल आई जस्ट फिनिश दिस। भक्ति में संलग्न मनुष्य जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही लो मोदी योगा कर्मसु यही बोलता है ना। अब आप देख लो मोदी क्या गलती कर रहे हैं, एक श्लोक कहीं से निकाल के कुछ भी बोल सकते हो, कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है सेवा का कर्मयोग का, वो क्या कह रहा है वो अपने जॉब में लगा रहा है, नॉनसेंस, मतलब मिस इंटरप्रिटेशन है। नहीं, गांधी ने भी मिस इंटरप्रिटेशन की थी गीता की, तभी प्रभुपाद ने कहा गांधी को लेटर लिखा था तुम मेरे पास आके पढ़ो भाई, तुम क्या क्या कर रहे हो तुम। योगा योग क्या है, कर्मसु कौशलम, क्या मतलब भगवान बता रहे हैं, असली योग क्या है सेवा का कौशल, एक्चुअली आर्ट ऑफ सर्विस, सेवा करने का कौशल ही योग है। अगर आपको सेवा करनी आती है अच्छे से, भगवान के लिए कुछ करके दे रहे हो बस, वो आप एक्सपर्ट हो, भगवान आपको योगी मानते हैं, वरना योगी उल्टा उल्टा लटकने वाला योगी नहीं होता। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण अपने आप को भौतिक संसार से कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। सेवा करोगे तो कर्म के फलों से मुक्त हो जाओगे ना, पाप पुण्य कट जाएंगे। इस प्रकार से वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के पास जाकर अवस्था में प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे। सेवा करोगे भगवान से आसक्त हो जाओगे, आसक्त हो जाओगे भगवान के पास चले जाओगे बस, वरना दोबारा आ जाओगे, सिंपल और क्या। सो अब अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ लिया, अर्जुन बाद में क्वेश्चन पूछेगा तब, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी। चलो मैं कल डिस्कस करूंगा, ये कल खत्म कर दूंगा। हरे कृष्ण, कुछ क्वेश्चन है कुछ पूछने है, हमने 2nd chapter 51st verse तक 51 श्लोक तक कर लिया है। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, स्टॉप है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।